लिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसका, हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसे वो बजा लाने वाले हैं। बस इन्हें इस अमर में आपसे झगड़ा न करना चाहिए। आप अपने परवरदिगार की तरफ लोगों को बुलाइए, यकीनन आप ठीक हिदायत पर हैं। फिर भी अगर ये लोग आपसे उलझने लगे तो आप कह दें कि तुम्हारे आमाल से अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है, बेशक तुम्हारे सबके इख्तलाफात का फैसला क्यामत के दिन अल्लाह ताला आप करेगा। क्या आपने जाना नहीं कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के इल्म में है? ये सब लिखी हुई किताब में महफूज है। अल्लाह पर तो ये अमर बिल्कुल आसान है। व याबुदून मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हैं जिसकी कोई खुदाई दलील नाजिल नहीं हुई, ना ही वो खुद इसका कोई इल्म रखते हैं, जालिमों का कोई मददगार नहीं। जब के सामने हमारे कलाम की खुली हुई आयतों की तिलावत की जाती है तो आप काफिरों के चेहरों पर ना खुशी के आसार साफ पहचान लेते हैं। वो तो करीब होते हैं कि हमारी आयतें सुनाने वालों पर हमला कर बैठे। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बदतर खबर दूं? वो आग है जिसका वादा अल्लाह ने काफिरों से कर रखा है और वो बहुत ही बुरी जगह है। ये थी आयत नंबर 67 से 72, 67 से 72। इन आयात का टॉपिक लिखेंगे, इनकी नागवारी से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो इन सारी चीज़ों में मुशरिकों के वो फेस एक्शंस और उनके वो जो उनके एक्शंस बनते थे अल्लाह के कलाम की बातों को सुनकर उनको पेश किया गया। आज भी लोग बहुत पेचोताप खाते हैं इस्लाम की तरक्की पे या इस्लाम के दलाइल पे। तो ऐसे लोगों को फिर ये बात याद रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके दीन के बारे में क्या सोचते हैं। अब इसके आगे यहाँ से लेके सूरत के आखिर तक वो चीज़ है जो पूरी सूरत से हमें सीखनी थी। या युहन्ना सुदूरी पर मसलुम फस्तमेउ लहू, अंदाज देखिए किस तरह से शुरू हो रही है बात। बिल्कुल अछूता सा अंदाज है बात को बयान करने का। ऐ लोगो, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान लगा कर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते रहे हो वो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते, गो सारे के सारे ही जमा हो जाएं। बल्कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज ले भागे तो ये तो इससे भी छीन नहीं सकते। कितना कमजोर है तलब करने वाला और कितना कमजोर है वो जिससे तलब किया जाए। और हकीकत क्या है कि माँ कदरुल्लाह हक्का कदरी इन अल्लाह लकवीयुन अजीज, इन्होंने अल्लाह के तबे के मुताबिक इसकी कदर जानी ही नहीं। सच है ना, अल्लाह ताला बड़ा ही जोर और कुव्वत वाला और गालिब और जबरदस्त है। फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को अल्लाह ही चाट लेता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। वो बखूबी जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे है, और अल्लाह ही की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं। ये थी आयत नंबर 73 से 76, 73 से 76। इसका उन्वान हम लिखेंगे, जो खाने से मक्खी को दूर नहीं कर सकता वो तुम्हारी तकलीफें कैसे दूर करेगा। जिस दौर में ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त तो मक्खी वाकई एक हकीर जानवर महसूस होता था। उनको लगता था कि मक्खी कायनात में अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे छोटी मखलूक होगी। लेकिन आज के दौर में जब हम इस मिसाल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मक्खी भी कोई बेकार चीज़ नहीं। आज तो अमीबा जैसा एक सेल रखने वाला जानवर तक डिस्कवर हो चुका कि जिसका एक पूरा अपना सिस्टम है। अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ मक्खी की मिसाल दे के मुशरिकों को बेबस कर दिया। आपने देखा होगा कि खाना खाते हुए आप जितना मर्जी बचें, अगर कहीं कोई एक मक्खी आपके पीछे पड़ जाए तो वो कहीं ना कहीं से कुछ चुरा के ले जाती है, वो लेके चली गई। जिस तरह मक्खी से कोई इंसान कुछ नहीं ले सकता, उसी तरह मुशरिक भी इंसान को कोई ऐसी चीज दे नहीं सकते जो कि अल्लाह ताला उसको ना देना चाहे। बहुत ही मैं समझती हूँ कि शऊर को बेदार करने वाली मिसाल है, अगर वाकई हम इसको उस अंदाज से देखें और सुने कि किस तरह से ये मक्खी इंसान को बेबस कर देती है। इसी तरह जैसे मक्खी एक जगह से उठ के दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह जाती है, यही हाल मुशरिक का होता है। एक कब्र से उठता है तो दूसरी जगह, दूसरी से उठा तो तीसरी जगह। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे मुशरिकों का हाल क्या है कि माँ कदरुल्लाह हक्का कदरी। ये जुमला कुरान पाक में 3 जगह आता है कि लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कि उसकी कदर का हक था। और ये कितनी बड़ी हकीकत है कि जिसका अगर इंसान इजहार करके अपनी पिछली जिंदगी के रवैयों पे माफी मांग के आइंदा के लिए कोशिश करने वाला बन जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। आप देखिए कि सारी जिंदगी हम दुनिया की कदर ही तो करते रहते हैं, कभी रिश्तों की कदरदानी, कभी इंसानों की, कभी चीजों की। किसी को अगर आप किसी चीज को मिस यूज करता हुआ देखे तो आप कहते हैं इसने इसकी कदर नहीं की, ले लो इससे, इसको इसकी अभी कदर नहीं है, अभी ये डिजर्व नहीं करता। इसी तरह अगर आज दुनिया में इंसानों के जीने के स्टाइल को देख लीजिए तो क्या लगता है कि अल्लाह की कदर हो रही है? क्या आज अल्लाह का दीन हमारे लिए कोई बाकदर चीज है? अल्लाह के रास्ते कोई कदर वाले रास्ते दिखते हैं? या अमूमन लोगों को जिस चीज के लिए दिन रात भी कुर्बानियां देनी पड़े, क्या वो अल्लाह के रास्तों की है या दुनिया के रास्तों की है? हम सबको अपने आप को चेक करना है कि क्या हम अल्लाह की कदर करते हैं। और इंशाल्लाह अगली आयतों में इसको मजीद भी हम समझेंगे। यहाँ थोड़ी सी बात मक्खी की करना चाहूंगी कि मक्खी भी अल्लाह तआला की कुदरत की एक निशानी है। मक्खी की जो आंख होती है ना, वही असल में इसका सबसे बड़ा हथियार है। 6 एंगल्स होते हैं उसके, हेक्सा गोनल जिसको आप कहेंगे। आप अगर ये कह लेना कि आम मक्खी की 500 आंखें होती हैं और 5,000 तक आंखें होती हैं, अगर आप ये दूर से देख सकेंगे, ये मक्खी की आंख का बड़ा किया हुआ है। आपको ये जो छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं ना, ये इसकी हर आंख एक डिफरेंट अदसा है, लेंस जिसको बोलते हैं। हमारा ये एक लेंस है ना, ये जो सफेद के अंदर जो काला हिस्सा होता है ना, ये एक है। मक्खी के ये 500 से लेके 5,000 होते हैं और चारों तरफ से देखती है। कभी आपने नोट किया होगा कि आप पीछे से भी मक्खी को मारने लगे ना तो वो भी उड़ जाती है। आप कहते इसको कैसे पता चला? क्योंकि कुदरत ने इसको इस तरह से बनाया कि ये चारों तरफ से देख सकती है और इसकी आंख गोल होती है। और मक्खी करती क्या है, इसका काम देखिए कि ये जो खाने का एक लुकमा हमसे लेती है ना, ये अपने जिस्म के अंदर नहीं लेके जाती, बल्कि जिस्म के बाहर अपने जिस्म से एक ऐसा मादा फेंकती है कि जिसकी वजह से वो खाना जो है वो काबिल हो जाता है हजम होने के। ये एक और तस्वीर अगर आप देखें तो ये देखिएगा कि ये जो इसके जिसको डंक कैसे सकते हैं ना, इनकी वजह से ये फूड को जो ग्रैब करती है, इसको वहां से लेके और फिर पहले बाहर जिस्म में डालती है, वो खाना इसके लिए अब्सॉर्बिंग हो जाता है और फिर उसके बाद इसकी वजह से सक करती है। कितना सर होता है मक्खी का, आप जरा किसी एक मक्खी को नाक पे बैठने तो दें। वो हस्ती जिसको हम नाक पे नहीं बैठने देते, अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। और एक मक्खी अल्लाह ने उसकी मिसाल दी, और यही वो आयत है कि जो नाजिल हुई थी तो उन्होंने कहा था ये क्या बात है भाई, अल्लाह ताला मक्खियों और मच्छरों की मिसालें दे रहा है कुरान में, मक्खी की और आगे चींटी की। आप पढ़ेंगे नमल सूरत में तो उसपे कहा था कि नल्लादरीबा मसलम मा बऊदा। तो बात यह है कि इंसान वाकई अपने आप को बेबस महसूस करता है। अब आगे उम्मत मुस्लिमा को खास तौर पर मुखातिब किया गया, या अय्युहल्लज़ीना मनुर्कउ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू सजदा करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वजाहिदू फिल्लाही हक्का जिहादी, और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे जिहाद का हक है, क्योंकि इसने तुमको चुन लिया और तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी। दीन अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही कायम रखो, इसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा इस कुरान से पहले और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाजें कायम रखो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को मजबूत थाम लो, वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और कितना बेहतरीन मददगार है। ये थी आयत नंबर 77 से 78, 77 से 78, और आखिरी आयते हैं सूरत अल हज की। इनका टॉपिक लिखें उम्मते मुस्लिमा की कामयाबी का राज। अगर आप इन सारी ही आयतों को हाईलाइट कर लेंगे ना, तो बस आप समझ जाएंगे कि हमने इसके ऊपर गौर करके अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान लिया। ये है वो मकसद जिसके लिए अल्लाह ताला ने उम्मते मुस्लिमा को पैदा किया, और वो क्या था, अल्लाह के रास्ते में वैसी मेहनत करना जैसी कि मेहनत का हक है। लेकिन इसके लिए पहले एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, और वह रुकू और सजदों और इबादत का होता है, और वफ़लुल खैर खैर का काम करने की बात है। आज हम बहुत खुश होते हैं कि उम्मते मुस्लिमा बेहतरीन उम्मत है, लेकिन ये उम्मत बेहतरीन कब होगी, जब ये अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जोड़ेगी, जब ये अपनी जात के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को वो जगह देगी कि जो हक है इसका देने का। ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की कदर करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि किसी शख्स के बारे में आप कुछ बातें सुनते हैं, फिर आप सुनते सुनते आपके दिल में एक राय बन जाती है, अच्छा ऐसी है, सो सैड। और बाज़ दफ़ा आप बहुत किसी के बारे में ग्रज रखे होते हैं और आपका दिल खट्टा और नीला और पीला मीठा, पता नहीं क्या हुआ होता है, फिर एक मौके पर आपको उस शख्स से मिलने का इत्तेफाक होता है, और जब आप उसको मिलते हैं तो आप कहते हैं ये वो तो नहीं है। ये तो वो नहीं है, ये मैंने तो गलत सुना था, ये तो वही नहीं है। और ये बात सलमान फारसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की थी कि आपके बारे में इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो चुका था कि जब आपको मिले तो इतने परेशान थे, लेकिन जब आपको मिले आपका इखलाक आपकी बातें, कहेंगे ये वो नहीं है, लोगों ने गलत कहलाया है। इसी तरह जब हम अल्लाह के बारे में बाहर बाहर दूर दूर से सुनते हैं ना, तो हाल क्या होता है कि हम सोच लेते हैं अच्छा जी है वो एक अल्लाह, हाँ ठीक है होगा। लेकिन जब कोई अपना तारुफ खुद करवा देता है और अपने रास्ते खुद दिखा देता है, तो फिर आप उस वक्त आप उसको सही तरह से पहचानते हैं। हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद हमें अपने रब की पहचान होती है। क्या आप में से वो लोग इस बात की तस्दीक करेंगे जो पहली दफा कुरान पाक का शौरी तौर पर सफर कर रहे हैं? वो रब जो बचपन से आज तक हमारे साथ था, वो अल्लाह जिसका नाम सुना हुआ था, जिसके लिए दिन में 5 दफा मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ते होंगे, क्या वो वही रब है जो इस किताब को पढ़ने के बाद हमें महसूस होता है? हमने तो रब की एक खास तस्वीर बनाई हुई है कि मस्जिद में जाओ तो उसके आगे नमाज पढ़ते हैं। अब किसी बच्चे से भी पूछें, बच्चों रब किसको कहते हैं, अल्लाह किसको कहते हैं, वो कहेंगे वो जिसके नाम पे जाके हज करते हैं, वो जिसके सामने मस्जिद में जाके झुकते हैं। ये सही तारुफ नहीं है। असल तारुफ क्या है कि बंदे को अल्लाह की जात की इतनी मार्फत हो जाए कि वो उस प्लान को समझे जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में बनाया। अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए 2 ज़राए हमारे तक रखे थे, एक था फरिश्ते के जरिए। आप उसको कह सकते हैं कि रसूले मलक, मलक फरिश्ते को कहते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, उनके जरिए से पैगाम पहुंचा रसूले बशर तक, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इस चेन के बीच में जो फरिश्ते से शुरू होकर नबी के बीच में थी, इसमें एक तीसरी कड़ी लगाता है और वो उम्मत मुस्लिम है। ये है उम्मत मुस्लिमा का मुकाम। आसमान से जो कलाम जिब्राइल के जरिए उतरता था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचता था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह चले गए, आप दुनिया से जाने से पहले उम्मत को वो जिम्मेदारी दे गए हज्जतुल विदा के खुतबे के मौके पे के लोगों क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? हल बल्लग़्तु का अल्लाह के नबी आपने पहुंचा दिया, आपने खैरख्वाही का हक अदा किया, आपने अपना फर्ज अदा किया। फिर आपने आसमान की तरफ उंगली उठा के कहा कि अल्लाहुम्म अशहिद, अल्लाह गवाह रहना। फिर आपने उसके बाद अपनी उम्मत को एक पैगाम दिया था, और वो क्या था कि जिसने जो सुना है वो उसको बता दे, जिसने नहीं सुना, जो आज हाजिर है वो गायब को बता दे, क्योंकि बाज दफा गायब लोग सुनने वाले से ज्यादा सुन लेते हैं। बस एक फरमान अल्लाह के नबी की जुबान से सहाबा कराम ने सुना कि इस पैगाम को पहुंचा दो। कुछ अरसे के बाद उसके अल्लाह के नबी सल्लम का इंतकाल होता है। शायद वह शुरू के कुछ सदमे से निकलने के दिन जो लगे होंगे, उसके बाद थोड़े ही दिन की देर थी कि मदीना की गलियां सहाबा कराम से खाली हो गई, और हर बंदे को जहां मौका मिला वो इस पैगाम को पहुंचाने के लिए चल पड़ा। कहीं मास बिन जबल जा रहे हैं, कहीं अली जा रहे हैं, कहीं, और चंद लोगों के सिवा मदीना में वही लोग थे जो मदीना का इंतजाम चला रहे थे। और इस तरह इस्लाम फिर वो फैला वहां से दुनिया में कि सिर्फ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के 10 साल तक आप देखिए कि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स उस दौर की जो थी वो मुसलमान हो गई। और कैसे फैला? दावत से फैला, तबलीग से फैला। तलवारें तो बाद में उठती हैं, कभी जहाँ कोई दावत को रिजेक्ट कर दें, जहाँ उसका आखिरी वक्त आता है और इस्लाम फैल गया। इसके बरक्स अगर आज के हम होते, जरा सोचिए एक लम्हे के लिए, सिर्फ शऊर को बेदार करने के लिए, आज का आशिकाने रसूल होता और अल्लाह के नबी की वफात होती, तो वो तो रोजे की जालियों को पकड़ के बैठ जाता। सुबह चूमता, शाम चूमता, थोड़ा जोश आता तो एक नात पढ़ता, हाल पढ़ती, बेहोश होता, कोई बाल खोलता और सर धुन धुन के कहता मैं तेरे दर पे आया, अब यहां से कभी नहीं जाऊंगा। आप नातों में देखा करें कि तेरे दर पे आ गए, यहाँ आके कभी ना जाए। ये तो सरासर सऊदी रूल के खिलाफ है, आप तो इलीगल वहां रहेंगे। आप जरा सोचिए ये कौन सी मोहब्बत है? अल्लाह ने इन आयतों में जो हक दिया वो क्या है? हुवज्तबाकुम। इसको हाईलाइट कर ले, आयत नंबर 78 के अंदर है, हुवज्तबाकुम, उसने तुमको पसंद किया, उसने तुमको चुन लिया, उसने तुम्हें वो मुकाम दिया जो कल तक अंबिया कराम को दिया गया था। और वो पैगाम क्या था कि पहले इस हक को खुद पहचानो और इसके बाद फिर इसको दूसरों तक लेके चलो। पहले अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, अपने मुआशरे के साथ जिहाद करो, अपने खानदान और अपनी रस्मों के साथ जिहाद करो, फिर उसके बाद गैरों तक चलो। लेकिन जो बंदा अल्लाह की इस बात को ना माने और वो ये सोचे कि सिर्फ मुसलमान कहने से उसका हक अदा हो गया, तो याद रखिये फिर वो उस कड़ी से निकल जाएगा। ये वो मनहज है जिसके लिए उम्मत मुस्लिमा पैदा की गई। अल्लाह ने कहा जिहाद करो, और जिहाद किताल से नहीं शुरू होता, उस पर तो खत्म होता है। अल्लाह तआला ने समाकुमुल मुस्लिमीन कह के एक और लोगो दे दिया कि तुम्हारा नाम मुसलमान होना चाहिए। इस हिस्से को भी हाईलाइट करेंगे आप, हुवा समाकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। ये नहीं कि हुवा समाकुमुल हनफी, हुवा समाकुमुल ब्रेलवी, हुवा समाकुमुल वहाबी, आज यही नाम है ना मुसलमानों के। ये वो आयत है, अल्लाह ने आपको नाम दिया। देखिए कोई बच्चा पैदा होता है ना, फिर घर का बड़ा कोई इसको नाम दे दे, तो पसंद हो ना हो, मुश्किल लगे, आसान, लोग बदलते नहीं कि ये हमें बड़े ने दिया था। अल्लाह ने एक नाम दिया था हमको और वो मुसलमान का नाम था। यही नाम हजरत ईसा के साथियों को मिला था हवारियों की सूरत में, यही नाम यहूद को मिला था अपने दौर में बनी इसराइल की सूरत में। आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही मनहज है कि लोगों को अल्लाह से जोड़ना है, ना कि अपने नाम से। आप देखिए कि शायद को पढ़ के यकीन करें, शर्म नहीं आती। अल्लाह ने हमें क्या बनाना चाह, अल्लाह ने हमें कितने बड़े मकसद के लिए दुनिया में भेजा, और हम बतन और फर्ज के तकाजे पूरे कर रहे हैं। ईट ड्रिंक बी मैरी, हमारी जिंदगी आज क्या वही नहीं है कि अपना घर बना लो, अपनी जिंदगी में रहो और बस तुम खुश, तुम्हारे 4 बच्चों की शादी हो गई, दुनिया में तुम अपने अपने घर बन चुके, हर बच्चे के नाम एक घर लग गया, अब उसकी गाड़ी आ गई, अब उसका सेलफोन आ गया, आप कहते शुक्र अल्लाह का सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गए। कभी लोगों के कमेंट सुना करें जब कोई दुनिया से जाते हैं ना, लोग कहते हैं शुक्र है सारी जिम्मेदारियों से फारिग होके गए। सुने कभी ये जुमला, जरा इस आयत को सामने रख के पूछिएगा। ये तो दुनिया वाले हमारी गवाहियां दे रहे हैं ना कि शुक्र है सब घर के हो गए, सब बच्चियां भी अपने घर में, बच्चे भी हैं और ये भी और वो भी और वो भी, लेकिन अल्लाह कल पूछेगा बताओ जो मैंने तुमको काम दिया था। वजाहिदु फिल्लाही हक्का जिहादी, उसको कितना करके आए हो। वातसिमु बिल्लाह का काम कितना करके आए हो। तो उस दिन पता चलेगा कि वो दीन जो अल्लाह ने हमारे लिए खूबसूरत दीन रखा था, आज उस दीन को लोग ठोकरे मारते हैं, आज उस दीन पे जिसका दिल चाहता है इल्जाम लगाता है, आज उस मुसलमान लफ्ज को लोग गाली बना के पेश करें, आज वो लफ्ज मुसलमान जो है लोगों को हजम नहीं होता, उनको दुनिया के किसी और दीन से कोई गिला नहीं सिवाय इस्लाम दीन से। कभी आप सोचा करें, सिर्फ यहूदियत और नसरानियत, मुसलमान और इस्लाम, ये 4 दीन नहीं, आज दुनिया में हजारों मजहब है। कभी आपने किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा सुना? क्यों लोगों को ये दीन बुरा लगता है? क्योंकि इसकी वजह से लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ा जाता है और उसकी सारी निस्बत जब वो अल्लाह की तरफ जाती है। अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा ना जागी तो याद रखिएगा कि कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि बताओ मैंने तुम्हें ये एक नाजुक काम दिया था, एक मुश्किल काम था, इसके लिए मुजाहिदाना जिंदगी चाहिए होती है। जो वाकई दिल से अल्लाह के आगे झुकता है ना, फिर वो दूसरों को भी झुकाता है, फिर उसके अंदर खैर ख्वाही आती है, फिर अपना वक्त, माल, पैसा, स्किल्स, अपनी औलादें, वो सबको अल्लाह के दीन के लिए लगा देता है। हम एक घर लेना चाहते हैं ना, हम अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, हम कहते हैं एक दफा मेरा नाम बन जाए। बाज दफा बिजनेसेस जब डूबते हैं तो लोग अपना जेवर तक बेच के उसको स्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब तक ये तड़प अल्लाह के दीन के लिए हमारे दिल में नहीं आती, याद रखिए कि हमने हक अदा नहीं किया। दूसरे पारे में आपने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने तुमको उम्मत वसत बनाया, उम्मत वसत अल्ली तकून शुहदा अलन्नास, उसने तुमको उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाही दो। क्या आज दे दी? मैं तो कहती हूँ आज बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। आप एक एक्टिविटी कर लें, चलते फिरते लोगों से महफिलों में, शादियों में, दावतों में जरा पूछिए, 10 जवानों से पूछ लें, 10 मैरिड खवातीन से पूछ लें, 10 मर्दों से पूछ लें कि अल्लाह ने हमें क्यों भेजा। बड़े भी दीन के मूड में होंगे ना तो कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, और एक वायद वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, वो कहेंगे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा। ये तो इंसानों को भेजा था, उम्मत मुस्लिमा को क्यों भेजा? आज हमारी फहरिस्तों में ये काम नहीं है कि हमने इस्लाम के लिए भी कुछ करना है। एक दफा मैंने एक पेश की बात आपके साथ भी उसी तरह शेयर कर सकती हूँ। बस आप देखिए कि एक दर्स में थी मैं, बहुत सारी खवातीन थी अल्हम्दुलिल्लाह, बात हो रही थी इसी टॉपिक पे। मैंने उन्हें कहा, शाम का वक्त था, मैंने कहा आप ये बताइए कि आज सुबह से लेके अभी तक आपने क्या नेकी का काम किया, आपने अच्छा काम क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह सभी अपनी बात बताने लगी, फजर पढ़ी, किसी ने कहा सुबह दुआएं पढ़ी, किसी ने कहा कुरान पढ़ा, किसी ने कुछ कुछ, यानी जो भी अपने मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बच्चों की बातें की। मैंने कहा ये सब आपने किया अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत है कि इससे भी बहुत फायदा होता है और इंडिविजुअल से ही कौम बनती है, लेकिन ये सब तो आपने अपने लिए किया। नमाज पढ़ी तो आपको सवाब, अगर आपने सुबह शाम की दुआएं पढ़ी तो आप शैतान से महफूज हो गई। आप ये बताइए कि सुबह से लेके अभी तक आपने इस्लाम के लिए क्या किया, इस्लाम की इमारत को आपसे क्या फायदा हुआ? अब इसका जवाब नहीं था, ये क्या होता है? ठीक है जब उम्मत नमाजी होती है तो उसका असर दिखता है, तो उसे इस्लाम की इमारत मजबूत होती है, लेकिन आप देखिए हम इतने सेल्फिश हो गए कि इबादत भी जात के लिए है। ये पढ़ लो तो इतना सवाब, ये आयत पढ़ोगे तो जन्नत में 8 महल मिल जाएंगे, ये वजीफा कर लोगे तो तुम जन्नत के बीच में चले जाओगे, इतनी हूरें मिल जाएंगी, इतने गुलाम मिल जाएंगे। यानी दीन का वो असल रूप आज भी बंद है। कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ने पढ़ाने, इस दौरे कुरान, इस रमजान की बातों, तहज्जुदों के बाद भी इस पॉइंट को लेके उठे कि मकसद क्या था कि हमने इस्लाम के लिए कुछ करना है। इस्लाम एक सिसकता हुआ रोता हुआ बच्चा है, बिलबिलाल है इस वक्त। यकीन करें अगर आपको इसकी पुकार सुनाए ना तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। आप जब इंसानियत को इस घड़े की तरफ गिरता हुआ देखें जो अल्लाह के नबी के दिलों में तड़पती, के लोगों तुम भाग भाग के आग की तरफ जा रहे थे और मैंने तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ा, मैंने तुम्हें तुम्हारी पुश्तों से पकड़ा, क्या आज इंसानियत, क्या नफ्स किस तरह गुलाम नहीं बन गई? नॉन मुस्लिम को तो छोड़ दीजिए, आज मुसलमानों की जिंदगी में जितना इल्हाद आ रहा है, नस्लों के जहन प्लूट हो रहे, उनकी सोचें बदल रही, उनको इस्लाम के नजरियात जो है वो बड़े सख्त लगने लगे, हमारी जिंदगी में, अमली जिंदगी में इतनी मुश्किल आ गई कि शादी जो है वो शादी रही नहीं। पहले तो कहीं लिख देते थे कि निकाह मिन सुन्नती, अपने कार्डों पे लिखा हुआ देखा होगा निकाह मेरी सुन्नत है, एक सुन्नत को पूरा करने के लिए हजारों सुन्नतों को हम तोड़ने लगते हैं। तो बहरहाल इस बात में जितनी बात कर सकें उतनी कम है, लेकिन पारा बहुत ही खूबसूरत पैगाम पे खत्म हो रहा है और सूरत हज हमको एक नई सोच देके जा रही है। आप और मैं, हम सब सोचें, कुरान पाक तो पूरा हो जाएगा, और चंद दिन की खेल है। क्या काम पूरा हो गया? नहीं, ये काम शुरू हुआ। हमने वो मकसद सोचना है, अपनी जिंदगी को इस नहज पे लाना है। यकीन करें कि अगर मक्का वालों को ये कह दिया जाता ना कि इस कुरान की आयतें पढ़ो और इसके साथ तुम्हारे जिन भाग जाएंगे, तुम्हारे भूत भाग जाएंगे, इस आयत को पढ़ लो इतना सवाब होगा, कभी उनको इतराज़ ना होता। ऐसे दीन पे कभी किसी को इतराज़ नहीं हुआ। और मुझे इसकी दलील किसी ने चंद दिन पहले भी दी, कुछ अर्सा पहले कोई थी, तो कहने लगी कि मुसलमानों के पास हिंदू लोग आते हैं दुआएं कराने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों में बच्चों को दम कराने के लिए आते हैं। एक बहुत अरसा पहले मैंने भी एक ऐसे मुल्क में गई थी, मुसलमानों की जो मजहबी जगह है वहां नॉन मुस्लिम आके वहां मनते मान रहे होते हैं, धागे बांध रहे होते हैं। आप बताइए, ये दीन तो किसी को बुरा नहीं लगता। आपको कोई कहे आइए आपको कुछ मिलेगा, तो कोई कहेगा ठीक है, नहीं ये लेंगे फेंक देंगे, कोई बात नहीं, नहीं पसंद है बुकलेट फेंक देंगे, इससे किसको इतराज था? कुरान की बरकतें लेना सबको पसंद आता है, वो भी चाहते थे, लेकिन दुश्मनी मक्का में भड़ी तो कब भड़ी, इस पैगाम को आम करने से जिंदगी बदली। वो इतने 313 बुतों की जगह बेखुदा कहते थे, इतनों से मांगते हैं फिर नहीं मिलता, तुम कहते हो सबको छोड़ के एक को मांगने लगे ताकि बिल्कुल ही ना मिले। मदीना में आए, दुश्मनी क्या थी? क्या यहूद को अगर कहा जाता कि जिस तरह तुम तौरात की आयतों को पढ़ते हो, ये कुरान की आयतें पढ़ते रहो, बड़े मजे से रहते। आज के दौर में भी ये मसला है, लोग खुशी से कुरान खानी करेंगे, लोग बड़े तपाक से, यकीन करें मस्जिदों में लोग बड़ी खुशी से कुरान पाक रखवाते हैं, लोग हज पे जाते हैं उमरे पे जाते हैं यहाँ से कुरान लेके जाते हैं, वो वहाँ के कबूतरों को दाना डालें बड़े शौक से डालेंगे। आपको कहा जाए कि आज जरा आप एक यहाँ मस्जिद की जरूरत है, आप देखिए चंद महीनों सालों में आप देखिए लोग इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी करते हैं, ये किसी को बुरा नहीं लगता। मसला कब आता है कि हुवज तबाकुम, जब अपना आप देना पड़ता है, तो अल्लाह ताला हमें इस दर्जे पे इस दीन को लेने वाला बना दे कि इस दीन में और हमारे में कोई फर्क ना रहे। और ये वो मेयार होगा कि जो मैं अपने घर के लिए, अपनी जात के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ, कि अल्लाह के दीन के लिए भी ये सोचती हूँ। आप एक बिल्कुल अपने चार बच्चों में एक पांचवा बच्चा शामिल कर लें, बस ये सिंपल सी एक्टिविटी है। तीन बच्चे हैं ना, तो एक बच्चा अपना इस इस्लाम को बना लें। आपका कोई बच्चा नहीं है ना, आप खुशी से इस्लाम को अपना बच्चा बना लें। जो माँ अपने बच्चे के लिए कुर्बानियां देती है, रातों को जागती है, दिन को जागती है, आप इस्लाम के लिए जागिए। आप करिए, कोशिश कीजिए, आपने इस इस्लाम के छोटे से बच्चे को बड़ा बनाना है। आज आपके थोड़े करीब करीब दिख रहा है, आपने इसको फैलाना है। आज ये बीमार है बच्चा, यकीन करें इस्लाम का बच्चा बीमार है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन इस्लाम के बच्चे की कहीं टांगे खराब हैं, कहीं कान खराब है, कहीं लोगों को इसके ऊपर इतने एतराज हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसको वाकई अपना बनाएं, ये नौ के सोतेले बच्चे वाला सलूक करें। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।